खामोश विद्रोह, एरिक वोगेल और औद्योगिक नमक की कीमिया, जहां औद्योगिक रसायन विज्ञान एक ऐसी दुनिया में कट्टरपंथी सादगी से मिलता है जो अप्रचलन के लिए डिजाइन की गई है। 1990 के एक कैंपर का धुंधला सिलहुट सौर पैनलों के खंडित चमक के नीचे टिका हुआ था। पंख एक सुप्त दैत्य की शल्कों की तरह चौड़े फैले हुए थे। ये एरिक वोगेल की चलती फिरती प्रयोगशाला थी जो उसके भीतर गूंजती एक शांत क्रांति का एक मोबाइल वसीयतनामा था। अंदर अराजकता व्यवस्था में बदल गई। एक शेल्फ पर पुरानी किताबें रखी थी, एक मरते हुए शिल्प की इलेक्ट्रोकेमिकल बाइबल, न्यूमैन की इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स, विंसेंट और स्क्रोसाटी की मॉडर्न बैटरीज, क्रॉम्पटन का विशाल औद्योगिक संग्रह। उनके बीच छिपी हुई थी वैंस पैकर्ड की द वेस्ट मेकर्स, नियोजित अप्रचलन के बारे में एक तीखी भविष्यवाणी जिसने एरिक के विद्रोह को आकार दिया। ये कैंपर केवल खानाबदोश नहीं था, ये एक अवधारणा का प्रमाण था। छोड़े गए फोकलिफ्ट बैटरी केस से बनी खारे पानी की कोशिकाओं के एक छोटे से बैंक द्वारा संचालित ये एक आत्मनिर्भर चौकी थी, ग्रिड से स्वतंत्रता की घोषणा। लेकिन असली क्रांति, एक अलग भविष्य का खाका, इसके दरवाजे के ठीक परे जड़े जमा रही थी। बगीचे की प्रयोगशाला, जिसे दूसरे लोग बगीचा कह सकते हैं, लेकिन जिसे एरिक अपने परीक्षण के मैदान के रूप में जानता था, वहां भविष्य ने ठोस रूप लिया। बाल्टिया, औद्योगिक प्लास्टिक की बाल्टिया, प्रत्येक 40 लीटर की, एक विशाल सोए हुए जीव की कोशिकाओं की तरह ढेर और कॉन्फिगर की गई थी। ये उसके मोबाइल रिग के पुनः उपयोग किए गए केसिंग नहीं थे, बल्कि कुछ अधिक मौलिक, अधिक स्केलेबल थे। यूटिलिटी टब, उपयोगी बर्तन जो कार्यशालाओं और निर्माण स्थलों की भाषा बोलते थे। 48 बाल्टियां श्रृंखला में व्यवस्थित 48 वोल्ट एक ग्रिड टाई इन्वर्टर के भूखे जबड़े को खिलाने के लिए। इन्वर्टर स्वयं कॉरपोरेट विडंबना का एक उत्कृष्ट नमूना था। हजारों की लागत वाले टेस्ला पावरवॉल के साथ इंटरफेस करने के लिए डिजाइन किया गया। ये इसके बजाय सबसे मामूली बैटरी बैंक से वोल्टेज पिएगा जिसकी कल्पना की जा सकती है। औद्योगिक एप्सम नमक के एक अमृत से भरी बाल्टिया, प्लंबिंग आपूर्ति से बने इलेक्ट्रोड और पेटेंट प्रणाली से भी पुरानी रसायन शास्त्र। इलेक्ट्रोड डिजाइन एरिक की शांत उत्कृष्ट कृति थी। संकेंद्रित ट्यूब, एक जस्ता ट्यूब के अंदर एक एल्यूमिनियम ट्यूब सटीक रिक्ति द्वारा अलग की गई। दोनों एक केंद्रीय स्टील पिवट पर लगे हुए थे जो प्रत्येक बाल्टी की पूरी गहराई तक चलता था। पिवट ने सफाई, निरीक्षण, प्रतिस्थापन के लिए पूरे इलेक्ट्रोड असेंबली को बाहर निकालने की अनुमति दी। कोई वेल्डिंग नहीं, कोई विशेष उपकरण नहीं, बस थ्रेडेड रॉड और औद्योगिक ट्यूबिंग, अपनी आवश्यक सादगी में सुरुचिपूर्ण। बाहरी जस्ता ट्यूब वास्तव में एक नालीदार जल निकासी पाइप ने ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के लिए विशाल सतह क्षेत्र प्रदान किया। इलेक्ट्रोलाइट परिसंचरण के लिए छिद्रित आंतरिक एल्यूमिनियम ट्यूब कैथोड के रूप में कार्य करती थी। उनके बीच संतृप्त मैग्नीशियम सल्फेट समाधान के 40 लीटर इलेक्ट्रॉनों की यात्रा के लिए एक आयनिक राजमार्ग बनाते थे। प्रत्येक बाल्टी एक वोल्ट, 48 बाल्टियां 48 वोल्ट। गणित प्राचीन था, सामग्री सामान्य थी, लेकिन निहितार्थ क्रांतिकारी थे। नीचे कंक्रीट की नींव ने रासायनिक युद्ध की अपनी कहानी बताई, खनिज फोम से युक्त सेलुलर कंक्रीट, ऊपर की संक्षारक रसायन शास्त्र के लिए अभेद्य, चित्रित या लेपित नहीं बल्कि आण्विक रूप से नमक के घोल के खिलाफ बख्तबंद, जो पारंपरिक कंक्रीट को एसिड की तरह खा जाएगा। प्रत्येक बाल्टी अपने स्वयं के अवसाद में बसी हुई थी, भूकंप स्थिर, मौसमरोधी, भूविज्ञान की तरह स्थायी। एरिक एक प्रोटोटाइप सेल के बगल में घुटने टेक दिया, उसके केंद्रीय धुरी से इलेक्ट्रोड असेंबली को उठाते हुए। संकेंद्रित ट्यूब नमकीन पानी टपकाते हुए उभरे। एल्यूमिनियम सुबह की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। जस्ता काम कर रहे धातु की ईमानदार पेटना दिखा रहा था। ये शिल्प के रूप में प्रौद्योगिकी थी, कला के रूप में कॉरपोरेट इंजीनियरिंग के ब्लैक बॉक्स अत्याचार के खिलाफ विद्रोह के रूप में, जहां टेस्ला के पावरवॉल ने अपनी रसायन शास्त्र को वेल्डेड स्टील और मालिकाना सॉफ्टवेयर के पीछे छिपा दिया था। एरिक की प्रणाली ने निरीक्षण, समझ, मरम्मत के लिए आमंत्रित किया, जहां लिथियम को विशेष पुनर्चक्रण और खतरनाक सामग्री प्रोटोकॉल की आवश्यकता थी। उसके घटकों को किसी भी गैरेज में बुनियादी उपकरणों के साथ साफ किया जा सकता था और फिर से बनाया जा सकता था। संख्याओं में घोषणा पत्र। एरिक के लैपटॉप ने स्थिर प्रणाली के विधर्मी गणित को प्रदर्शित किया। स्थिर प्रणाली, बगीचे की प्रयोगशाला, 48 सेल श्रृंखला में 40 लीटर की औद्योगिक बाल्टिया, सेल वोल्टेज 1.0 V नाम मात्र, संकेंद्रित ट्यूब इलेक्ट्रोड, सिस्टम वोल्टेज 48.0 VDC, ग्रिड टाई इन्वर्टर के साथ संगत, क्षमता 800 एम्पियर घंटे, कुल भंडारण 38.4 WH, औद्योगिक पैमाने की क्षमता 38.4 WH, प्रणाली के लिए सामग्री की लागत 48x40 लीटर बाल्टिया 240 यूरो, एल्यूमिनियम ट्यूबिंग जाली 250 यूरो, प्लंबिंग आपूर्ति, जिंक ट्यूबिंग प्लेट्स 160 यूरो, समुद्री औद्योगिक आपूर्ति, मैग्नीशियम सल्फेट 120 यूरो, 525 किलो के कृषि बैग, हार्डवेयर और माउंटिंग 180 यूरो, थ्रेडेड रॉड, पिवोट्स, फिटिंग्स, कुल सिस्टम लागत 950 यूरो। इसकी तुलना समकक्ष वाणिज्यिक भंडारण से करें। एक एकल टेस्ला पावरवॉल 13.5 kWh की कीमत 8000 यूरो है। एरिक की 38.4 kWh प्रणाली ने लागत के आठवें हिस्से से भी कम में लगभग 3 गुना क्षमता प्रदान की। गणित केवल सम्मोहक नहीं था, यह क्रांतिकारी था। गहरा घोटाला अस्थाई था। लिथियम बैटरी मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आती थी, 3000 से 5004 चक्र, अपरिहार्य गिरावट के साथ। एरिक की नमक बैटरी हालांकि स्थायित्व के आसपास डिजाइन की गई थी, जिंक एनोड को अंतः प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी, लेकिन सेल स्वयं अमर थे। वास्तुकला उपभोग्य वस्तुएं नहीं, मशीन में भूत। सुबह की रोशनी ने दृश्य को तांबे और क्रोम में रंग दिया। कैंपर का अपना छोटा सौर सरणी पहले से ही अपनी आंतरिक बैटरी की देखभाल कर रहा था, एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन असली शक्ति बगीचे में सो रही थी। 48 सेल 3.2 kW ग्राउंड माउंटेड सरणी के माध्यम से सुबह की धूप पी रहे थे, ग्रिड टाई इन्वर्टर के भूखे जबड़े को खिला रहे थे। स्थिर प्रणाली ने रात भर में 8.4 kWh की खपत की थी। घर, कार्यशाला और प्रयोगशाला को बिजली देना, 800 एम्पियर घंटे की अपनी महासागरीय क्षमता में 48.0 V से 44.8 V तक गिर गया। एक बमुश्किल बोधगम्य परिवर्तन। दोपहर तक विशाल 38.4 kWh का बैंक फिर से भर जाएगा। रात के लिए तैयार। इसकी राउंड ट्रिप दक्षता 85% थी। लगभग अनंत मरम्मत क्षमता और उद्योग के मानदंडों को तोड़ने वाली निर्माण लागत के लिए एक नगण्य समझौता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दक्षता वक्र उन तापमान श्रेणियों में सपाट रहे जहां लिथियम सिस्टम लड़खड़ाते और विफल हो जाते। विधर्म का अर्थशास्त्र। असली विध्वंस आर्थिक था। एरिक की तकनीक का पेटेंट नहीं कराया जा सकता था। रसायन शास्त्र सार्वजनिक डोमेन था। सामग्री सामान्य इनपुट थी। निर्माण प्रक्रियाएं कहीं भी प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य थी। मैग्नीशियम सल्फेट एक कृषि खनिज था। जिंक और एल्यूमिनियम आधुनिक बुनियादी ढांचे के स्तंभ थे। एक सच्ची लोकतांत्रिक तकनीक जिसने इसे कृत्रिम कमी पर बनी दुनिया में आर्थिक रूप से रेडियोधर्मी बना दिया। लिथियम उद्योग का $100 बिलियन का बाजार पूंजीकरण नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं, मालिकाना योगों और राजस्व को अधिकतम करने के लिए इंजीनियर किए गए प्रतिस्थापन चक्रों पर निर्भर था। एरिक की नमक बैटरी ने इस पारिस्थितिकी तंत्र को अनिश्चित मरम्मत क्षमता के साथ प्रचुर मात्रा में सामग्री से तुलनीय प्रदर्शन की पेशकश करके धमकी दी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अकादमिक पत्रों में दफन रहे। तकनीकी गहरा गोता, क्रांति का रसायन शास्त्र। एरिक के विद्रोह को शक्ति देने वाली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रियाएं सुरुचिपूर्ण ढंग से सरल थी। जिंक एनोड पर ऑक्सीकरण ZnZn+2E, एल्यूमिनियम कैथोड पर कमी Al+3L, इलेक्ट्रोलाइट में आयन परिवहन MgSO Mg+SO, मैग्नीशियम सल्फेट समाधान में स्थिर, सुरक्षित और गैर संक्षारक रहते हुए आयनिक चालकता प्रदान की। महत्वपूर्ण चुनौती एल्यूमिनियम पैसिवेशन, तांबे के विपरीत एल्यूमिनियम ने पतली ऑक्साइड परतें बनाई जो इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में बाधा डालती थी। एरिक का समाधान आवधिक रखरखाव था, लेकिन यह एक लगातार काम नहीं था। 2000 से 3000 गहरे चक्रों के चक्र जीवन के साथ कैथोड को सतह की गतिविधि को बहाल करने के लिए केवल दैनिक उपयोग के हर 5 से 7 साल में सैंडब्लास्टिंग की आवश्यकता होती थी। भारी लागत बचत और तकनीकी अमरता के लिए एक छोटी सी कीमत, $1 अरब प्रणाली की जड़ता, इस तकनीक के लिए चुनौती द्वेष की नहीं बल्कि गति की है। मौजूदा बैटरी उद्योग अनुकूलन का एक चमत्कार है। लिथियम रसायन शास्त्र के जटिल बैले के लिए ठीक ठाक $1 अरब का पारिस्थितिकी तंत्र, विशाल निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाले कारखाने विशिष्ट मालिकाना प्रक्रियाओं के लिए तैयार किए गए हैं। मौलिक रूप से भिन्न सरल रसायन शास्त्र में धुरी बनाना एक मामूली समायोजन नहीं होगा, यह एक पूर्ण ओवरहाल होगा। तिमाही रिटर्न के लिए कोई स्पष्ट रास्ता के बिना एक विशाल पूंजी जोखिम, पेटेंट के विशाल पोर्टफोलियो और दशकों की बौद्धिक संपदा, बाजार मूल्यांकन की बहुत नींव, सभी इस विशिष्ट प्रतिमान से जुड़े हुए हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं विशिष्ट सामग्रियों के आसपास सावधानी पूर्वक निर्मित विशाल भूराजनीतिक और पूंजी निवेश का प्रतिनिधित्व करती है। नमक और धातु का सरल रसायन शास्त्र एक खलनायक से नहीं लड़ता है, यह स्थापित आर्थिक व्यवस्था के विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के खिलाफ धक्का देता है। यह एक ऐसी दुनिया में एक अलग रास्ता सुझाता है जिसने पहले ही दूसरी दिशा में एक बहुलेन सुपर हाईवे बना दिया है। सवाल यह नहीं है कि नया रास्ता व्यवहार्य है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या एक प्रणाली जो अपने वर्तमान पाठ्यक्रम में इतनी भारी निवेशित है, उसके पास एक मोड़ पर विचार करने की भी चपलता है। देर रात एरिक द वेस्ट मेकर्स खोलता। 1960 में लिखी गई पुस्तक ने उसकी दुनिया की भविष्यवाणी की थी, एक ऐसी दुनिया जहां सादगी अक्सर लाभ के साथ होती थी, जहां स्थायित्व स्थापित राजस्व मॉडल को खतरा पैदा कर सकता था, जहां मरम्मत की क्षमता अक्सर अगले अपग्रेड चक्र की खोज में खो जाने वाली एक विशेषता थी। लिथियम औद्योगिक परिसर कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक ऐसी प्रणाली का तार्किक परिणाम था जो जटिल आईपी और नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्राथमिकता देती है, जो स्वाभाविक रूप से परिभाषित जीवनकाल वाले उत्पादों की ओर ले जाती है। क्रांति बॉर्डरूम से नहीं आएगी जो इस जड़ता का सामना कर रहे हैं, यह चुपचाप फैलेगी। एक समय में एक नमक बैटरी, निर्माता रिक्त स्थान और ग्रामीण समुदायों के माध्यम से जहां लोगों ने वो बनाया जो उन्हें चाहिए था, बजाय इसके कि वे जो बेचा गया था उसे खरीदे। खामोश भोर, जैसे ही सुबह हुई, एरिक ने दूसरे दिन की तैयारी की। उसका कैंपर अपनी छोटी सी गूंज से संचालित चलने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी यात्रा का असली इंजन बगीचे में मूक विशाल था। 38.4 kWh संग्रहित धूप, एक घर, एक कार्यशाला, एक विचार को शक्ति देने के लिए तैयार। कोई रेंज चिंता नहीं, कोई आपूर्ति श्रृंखला भेद्यता नहीं, बस नमक और धातु का धैर्यवान रसायन शास्त्र वही कर रहा था जो उसने हमेशा किया था। उसका कैंपर एक वाहन से कहीं अधिक था। यह एक प्रारंभिक रोलिंग प्रदर्शन था और फिर इस बात का शोधन था कि सरल समाधान मौजूद है, कि बहुतायत संभव थी, कि प्रौद्योगिकी मानवीय जरूरतों की सेवा कर सकती है। भूमिगत भविष्य पहले से ही हो रहा था, जमीन के ऊपर दुनिया ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। एरिक मुस्कुराया, इंजन शुरू किया और कल की ओर बढ़ गया, अपने ही पिछवाड़े में गूंजते शांत विद्रोह का एक दूत।